प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पत्रस की पहली पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है दुखों के मध्य आशा। श्रोताओ, हमें उम्मीद है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो चलिए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित होते हैं, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, हो गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि बुराई के बदले बुराई मत करो परंतु आशीष दो, क्योंकि आप आशीषों के वारिस हो। जो अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने मुंह को छल की बातों से रोके, वरन मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सीखते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय रेडियो के सामने आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, उनके मन और दिल को तैयार करें, उन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में है और चाहते हैं कि वे चंगाई प्राप्त करें। प्रभु जी, मैं उनके लिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन पर कृपा दृष्टि करें, उन्हें स्पर्श करें, उनके जो भी पाप हैं, जो भी रोग हैं आप दूर करें, उन्हें क्षमा करें उन्हें अनंत जीवन की शांति दे, ताकि हर एक जीवन आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए। पिताजी, आज के अध्ययन पर भी अपनी आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए पहला पत्रस की पत्री 3:16 को पढ़ें। पहला पत्रस 3:16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। दूसरे शब्दों में, निश्चय जानिए कि आपकी बुराई करने वाले गलत हैं। मुझसे डॉक्टर मैकजिनली ने एक बार पूछा, एक बड़ी कलीसिया का सेवक होना या सेवा करना कैसा है, आपको कैसा महसूस होता है सभाओं में बोलना? मैंने कहा, बहुत अच्छा, परंतु मैं अपने आप को आत्मरक्षा के स्थान में नहीं देख पाता हूं। मैं रविवार को प्रचार मंच से तो नहीं कह सकता कि मेरे बारे में क्या बुरा भला कहा जाता है, क्योंकि मेरा काम वचन सुनाना है, परंतु मेरे विरुद्ध जो भी कहा जाता है वह सब गलत है। डॉक्टर जिनली ने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि जो वे कहते हैं वह सच नहीं है। पत्रस कहता है, विवेक भी शुद्ध करो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। तब पत्रस आगे कहता है 3:17 में, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। मेरे प्रियो, यदि आप मसीह के नाम से कष्ट उठाते हैं तो आनंद करें, परंतु यदि आप अपराध करके कष्ट उठाते हैं तो यह एक अलग बात है। और इसीलिए पत्रस हमें आगे कहता है, जो नूह के युग में प्रभु यीशु के कष्टों का प्रचार पवित्र आत्मा ने किया है। आइए हम पढ़ें पहला पत्रस 3:18 में, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। मेरे मित्रों, हमें यह समझना अति आवश्यक है कि प्रभु यीशु ने मानव रूप धारण किया था और मनुष्य होकर ही वह क्रूस पर मरा। वह क्रूस पर मर गया था और पवित्र आत्मा ने उसे मृतकों में से जीवित किया, और वह आज भी जीवित है। पहला पत्रस 3:19 में लिखा हुआ है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। यह अंश धर्मशास्त्र के दुर्बोध अंशों में से एक है। इस अंश का मुख्य पद पद 20 है, जिसमें एक छोटा सा शब्द जब आता है, कि जब वह मृतक हुआ तब उसने कैदियों को, बंदियों को भी सुसमाचार सुनाया। पहला पत्रस 3:20 में आगे हम पढ़ते हैं, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने बंदी आत्माओं में कब प्रचार किया था? जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर बैठा रहा। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था तब उन लोगों की आत्माएं बंदी थी जिनमें नूह ने प्रचार किया था, क्योंकि उन्होंने नूह के संदेश को तुच्छ जाना और उस पर विश्वास न किया। वे अधलोक में दंड की प्रतीक्षा में थी, वे खोई हुई आत्माएं थी। प्रभु यीशु मरने के बाद उनमें प्रचार करने नहीं गया था, उसने नूह के द्वारा प्रचार किया था। जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। नूह ने 120 वर्ष प्रचार किया। उसने अपने परिवार को तो बचा लिया, परंतु अन्य सब मारे गए। प्रभु यीशु का आत्मा नूह के द्वारा उस युग में प्रचार कर रहा था। प्रभु यीशु के सांसारिक युग में नूह के युग की आत्माएं बंदी थी। कहने का अर्थ है कि प्रभु यीशु की मृत्यु उनके लिए निरर्थक थी, जैसे आज भी अनेकों के लिए है, क्योंकि वे दंड के भागी हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय के 21 पद में हम पढ़ते हैं, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। कहता है उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। यह कौन सा बपतिस्मा है? यह पानी का बपतिस्मा नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। पानी का बपतिस्मा संस्कार मात्र है। मैं डुबकी के बपतिस्मे को मानता हूं, परंतु यहां पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है जो आपको विश्वासियों की देह में जोड़ता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। जी हां, पानी शरीर के मैल को दूर नहीं करेगा, पर शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है, अर्थात प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास, जिसके कारण आपके जीवन में पवित्र आत्मा ने काम किया और आपका नया जन्म हुआ है, आपके जीवन में परिवर्तन आया है। पहला पत्रस 3 अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्ग दूतों और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। यह पद प्रभु यीशु के बारे में कह रहा है। हम पापी मनुष्य उसको ग्रहण करके मुक्ति प्राप्त मनुष्यों की संगति में आ सकते हैं। हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे द्वारा मसीह के देह के अंग बन सकते हैं, क्योंकि वह मरे हुओं में से जी उठा है और आज परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि अध्याय 3 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 4 से जारी रखेंगे। इसका विषय है कष्ट परमेश्वर की इच्छा के आज्ञाकारी बनाते हैं। यहां पर पत्रस स्पष्ट करता है कि कष्ट मुक्त जीवन में संकट यह है कि हम जीवन की आशीषों को अपना श्रेय समझते हैं और हम उस स्थान पर आ जाते हैं जहां हम जीवन का वह मूल्य समझ नहीं पाते जिसका समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। विश्वासी होने के नाते आप जीवन को क्या मूल्य देते हैं? परमेश्वर अपनी संतान को कष्ट उठाने देता है कि हम पाप से बचें और जीवन के मान को भली भांति समझें। मेरे प्रियो, आज युवा पीढ़ी कहती है कि जीवन की दिशा ग्रहण करने के लिए उन्होंने यह किया, वह किया आदि, परंतु मैं कहता हूं कष्ट जीवन को एक नया मोड़ प्रदान करते हैं। दाऊद ने अपने इस अनुभव को भजन संहिता 66 उसके 10 पद में व्यक्त किया है, हे परमेश्वर तूने हमको जांचा है, तूने हमको चांदी के समान ताया था। परमेश्वर हमें परखता है कि हमें अपने निकट लाए और हमें नई दिशा प्रदान करे और जीवन में ले चले। कष्टों का उद्देश्य यही है। पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। मेरे मित्रों, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे इस पद में एक नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। इस पद ने वर्षों मुझे असमंजस में डाल रखा था। इसका कारण मैंने इस पद पर अधिक शिक्षा नहीं दी और अन्य टीकाकारों ने भी इसे अनदेखा किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा हमें इसकी समझ में ले चलेगा। लिखा है इसलिए, मेरे विचार में यह पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 18 पद से जुड़ता है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्माओं के भाव से जिलाया गया। मेरे प्रियो, यह दोनों पद एक साथ हैं और हमें स्मरण कराते हैं कि प्रभु यीशु ने देह में कष्ट उठाया और मारा गया। एक प्रचलित विचार है कि परमेश्वर मर गया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर न तो मर गया और न ही आज मरा हुआ है। निसंदेह प्रभु यीशु ने मानव शरीर धारण किया था जो मर गया था। इब्रानियों का लेखक कहता है कि वह हमारे समान सब बातों में परखा गया था। वह जानता था कि कष्ट सहना क्या है। उसका लहू बहा था, वह आंसू बहाना जानता था, वह दिल का टूटना भी जानता था। वह एक परिपूर्ण मनुष्य था और वह मनुष्य मर गया था। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर मनुष्य के पापों के साथ अपने संबंध का अंत किया। उसने पाप के दंड को अपनी देह में उठा लिया था। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। मेरे प्रियो, पत्रस 3 बार कहता है कि प्रभु यीशु ने अपनी देह में मनुष्य के पापों का दंड भोगा था। हम देखते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद, 3 अध्याय का 18 पद और 4 अध्याय का 1 पद। अतः मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु न तो पापों में मरा और न ही पाप के अधीन मरा, परंतु वह पापों के लिए मरा था। उसने हमारा स्थान ले लिया और पाप का दंड चुकाया। अब प्रभु यीशु पाप के लिए मरने नहीं आएगा। ध्यान रखें, अब पाप के साथ उसका कोई भी वास्ता नहीं होगा, क्योंकि वह मरे हुओं में से जी उठा है। वह महिमा की देह के साथ जी उठा है। वह पवित्र आत्मा द्वारा मरे हुओं से जी उठा था। वह देह के साथ जीवित है। उसकी देह स्वर्ग में परमेश्वर की सेवा में अर्पित है। वह स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर एवं सृष्टि की निकटता का आनंद लेता है। मेरे प्रियो, अब प्रभु यीशु हमें यह लाभ पहुंचाता है। पत्रस कहता है, तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। मनसा का अर्थ है मनोदशा। जैसा पौलुस फिलिपी की कलीसिया को लिखता है 2 अध्याय उसके 5 पद में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तब हम देखते हैं पत्रस कहता है, मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। पत्रस कहता है कि जिसने शरीर में होकर कष्ट उठाया वह पाप से छूट गया। छूट गया शब्द मुझे सदा ही परेशान करता है, क्योंकि मूल भाषा में इसका अर्थ है अब नहीं रहा। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 8 पद में पौलुस लिखता है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। यहां क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। अतः इस पद का अर्थ है कि यदि आपने देह में कष्ट उठाया है तो आप अब पाप से मुक्त हो गए हैं। मेरे मित्रों, पत्रस के कहने का अर्थ क्या है? पहले परमेश्वर आपको कष्टों द्वारा पाप से दूर रखता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। पत्रस कुछ और भी कहता है, हम पाप से मुक्त हो गए। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हमारे लिए मसीही जीवन जीने का प्रावधान किया है। डॉक्टर ग्रिफिस थॉमस का कहना है कि पत्रस एक ही पद में रोमियो की पत्री 6 अध्याय में निहित पौलुस का विचार रखता है। वहां पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मसीही जीवन जीने के लिए प्रावधान किया है। मेरे मित्रों, पत्रस स्पष्ट कहता है कि हम परमेश्वर के वचन से नया जन्म पाए हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की संतान उत्पन्न करता है और इस संतान में नया स्वभाव है जो पाप में नहीं जिएगा। यही कारण है कि हम पाप से मुक्त हो गए हैं, हम पाप का जीवन नहीं जिएंगे। जो कोई मसीह में है वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। मेरे प्रियो, मैं बाइबल का यह दृष्टांत बहुत सुनाता हूं। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 11 से 32 पद उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है। वह सुअरों के बाड़े में पहुंच गया, परंतु वह सुअर नहीं था, वह एक धनवान पिता का पुत्र था। क्योंकि उसमें अपने पिता का स्वभाव था, इसलिए उसे सुअरों का खाना अच्छा नहीं लगा। वह तो अपने पिता के घर के भोजन का आदि था। नया जन्म पाकर अब आप पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु यीशु की पहचान में हैं, इसलिए आपकी मनसा भी प्रभु यीशु की सी हो। वह तो स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए विनती करता है। मेरे मित्रों, आप क्या कह सकते हैं कि नया जन्म पाकर और मसीह का स्वभाव लेकर आप पाप में जीवन बिता सकते हैं? कदापि नहीं। मैं विश्वासी की सुरक्षा पर विश्वास करता हूं, परंतु इस पर इतना अधिक बल दिया गया है कि हमें जीवन की पवित्रता पर भी ध्यान देना चाहिए। आप परमेश्वर की संतान होकर पाप में जीवन नहीं बिता सकते हैं। सुअरों का बाड़ा अच्छा लगता है और पुत्रों को बाड़ा अच्छा नहीं लगता है। पत्रस कहता है कि परमेश्वर ने आपके लिए पूरा प्रावधान किया है, आपका नया जन्म हो गया है, आप में पवित्र आत्मा अंतर्वास करता है, आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है, आपकी पहचान प्रभु यीशु के साथ है। अब आप परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से जीवन जी रहे हैं। रोमियो की पत्री 7 अध्याय में पौलुस कहता है कि विश्वासी देह के कामों में व्यस्त हो जाए तो वह हार जाता है, परंतु रोमियो की पत्री 8 अध्याय में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम उसके सामर्थ्य के द्वारा जी सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा प्रबंध किया है कि हम पाप में न जिए। मेरे प्रियो, पाप में जीना हमारे लिए असंभव है। पुत्र सुअरों के बाड़े में जा सकता है, परंतु एक दिन वह निश्चय ही अपने पिता के पास वापस आना चाहेगा। यदि आपको पाप का जीवन अच्छा लगता है तो मैं आपके उद्धार पर संदेह करूंगा। एक बार तो आप चूक सकते हैं, परंतु पाप में पड़े रहना आपके लिए गंभीर समस्या है। परमेश्वर की संतान जिसका स्वभाव नया हो गया है, वह प्रभु यीशु को प्रसन्न करना चाहता है। यही कारण है कि मैं परमेश्वर के परिपूर्ण वचन के अध्ययन पर बल देता हूं। आप मुझे एक ही राग अलापने का दोष देंगे, परंतु मैं संगीतकार नहीं हूं, इसलिए मैं एक ही राग अलापता हूं और वह है परमेश्वर के पूरे वचन का अध्ययन करो। एक या दो पदों पर एक जीवन शैली तैयार करना उचित नहीं है। मसीही जीवन नियमों पर आधारित नहीं है। मसीही जीवन के लिए आपको मसीह का स्वभाव चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करें और उसका अपमान कराने वाले काम न करें। मेरे प्रियो, आज यह हम सब के लिए बहुत ही गंभीर बात है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, क्या हम नया जन्म पाकर फिर से पापमय जीवन जी रहे हैं? यदि हाँ, तो आज मुझे और आपको सोचने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति पाप में पड़ा नहीं रहेगा, परंतु वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि वह परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, न कि संसार को। यदि आप दो तरफा जीवन जी रहे हैं, तो अपने विश्वास को देखें, परखें, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन से, आपके जीवन से पवित्रता को देखना चाहता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के प्रकाशन में आप अपने आप को थोड़े समय रुक करके जांचें, परखें, अपने हृदय को झांक करके देखें कि आप कहां पर हैं। क्या आपने नया जन्म पाया है? क्या आपका उद्धार हो गया है? या आप पापमय जीवन जी रहे हैं? क्या आप उससे बचना चाहते हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप परमेश्वर से पा सकते हैं। आज के इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
हे प्रभु यीशु।